एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आयरिश लेखक की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिनकी तेज जुबान और तीखे विचारों ने न सिर्फ थिएटर को बदला बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
बिल्कुल, शॉ वो सिर्फ नाटक लिखने वाले नहीं थे,
नहीं,
वो एक समाज सुधारक थे, एक बहुत तीखे आलोचक और पक्के समाजवादी भी। और उनकी हाजिर जवाबी उफ कमाल की थी। आज भी उनकी बातें आप देखें तो एकदम ताजा लगती हैं।
हाँ, और उनकी सबसे बड़ी देन शायद यही है कि उन्होंने अंग्रेजी थिएटर को मतलब सिर्फ मनोरंजन की जगह से उठाकर सोच विचार और बहस का एक मंच बना दिया।
सही कहा।
वो विचारों के नाटक यानी ड्रामा ऑफ आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। ये अपने आप में एक क्रांति थी, है ना?
यकीनन यकीनन, उस जमाने में थिएटर का मतलब या तो मेलोड्रामा होता था या फिर हल्की फुल्की कॉमेडी। शॉ ने कहा, नहीं, थिएटर वो जगह है जहां समाज अपने सबसे जरूरी सवालों से जूझेगा, उन पर बात करेगा। उन्होंने तो स्टेज को एक लैब जैसा बना दिया जहां विचारों को परखा जा सके।
अच्छा,
और ये भी सोचिए, वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला 1925 में और फिल्म पटकथा के लिए ऑस्कर भी 1938 में। दोनों,
उनका जीवन भी तो देखिए, 1856 से 1950 तक, मतलब कितना लंबा सफर।
बहुत लंबा।
उन्होंने विक्टोरियन युग का अंत देखा और आधुनिक दुनिया की शुरुआत भी, गैसलाइट से बिजली तक, भाप के इंजन से हवाई जहाज तक,
डार्विन मार्क्स के विचारों का भूचाल।
हाँ, दो विश्व युद्ध, कितना कुछ बदल गया उनकी आंखों के सामने।
और इसी बदलते दौर की जो नब्ज है वो उनके लेखन में साफ धड़कती है। उनकी सामाजिक आलोचना, उनका व्यंग्य, पाखंड पर उनका वार, ये सब आज भी उतना ही सटीक लगता है, उतना ही रेलेवेंट। शायद इसीलिए शॉ आज भी इतने प्रासंगिक हैं।
तो फिर उस जमाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं जहां शॉ की सोच पनप रही थी। ये विक्टोरियन इंग्लैंड का आखिरी दौर था, है ना, जब पुरानी मान्यताएं हिल रही थीं और नए विचार जन्म ले रहे थे।
हाँ बिल्कुल, एक बड़े मंथन का, उथल पुथल का दौर था। एक तरफ पुरानी धार्मिक आस्थाएं थीं, दूसरी तरफ डार्विन का विकासवाद नए सवाल खड़े कर रहा था। औद्योगिक क्रांति समाज का पूरा ताना बाना बदल रही थी और कार्ल मार्क्स के विचार वो हवा में थे। एक बेचैनी सी थी, बदलाव की आहट थी हर तरफ।
शॉ का जन्म तो डबलिन में हुआ था, वहां के माहौल ने उन पर क्या असर डाला होगा? मतलब एक तरफ अमीर एंग्लो आयरिश प्रोटेस्टेंट, दूसरी तरफ गरीब कैथोलिक आबादी, ये विरोधाभास।
इस विरोधाभास ने उनकी नजरों को जरूर पैना किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने समाज में वर्ग भेद को बहुत करीब से देखा। बाद में जब वो लंदन आए, जो उस समय विचारों का एक तरह से गढ़ था, तो ये अनुभव उनके बहुत काम आए। लंदन में ही वो नॉर्वे के नाटककार हेनरिक इब्सन, उनके यथार्थवादी नाटकों के संपर्क में आए। इब्सन ने ही उन्हें एक तरह से रास्ता दिखाया कि नाटक कैसे सामाजिक बुराइयों का आईना बन सकता है।
और लंदन में ही वो फेबियन सोसाइटी से जुड़े 1884 में। ये क्या थी फेबियन सोसाइटी, कुछ बताइए इसके बारे में।
देखिए, ये बुद्धिजीवियों का एक समूह था। इसमें सिडनी और बीट्रिस वेब, एसयू वेल्स जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये लोग समाजवादी थे, हाँ, लेकिन वो खूनी क्रांति में यकीन नहीं रखते थे। वो धीरे धीरे बहस से, बौद्धिक तरीकों से समाज में सुधार लाना चाहते थे। शॉ इस सोसाइटी के एक तरह से स्टार वक्ता और पैम्फलेट लिखने वाले बन गए। यहीं उनकी तर्क करने की कला और उनका जो व्यंग करने का अंदाज है वो और निखरा।
दिलचस्प है। तो उनकी फाथी लेखक कौन थे उस दौर में, किनके साथ उनका उठना बैठना था?
अरे, बड़े बड़े नाम थे, ऑस्कर वाइल्ड थे, जिनकी सोच थी कला कला के लिए, जो शॉ के कला समाज के लिए वाले नजरिए से एकदम अलग थी, बिल्कुल उलट।
हाँ बिल्कुल।
कवि डब्ल्यू बी येट्स थे, जीके चेस्टर्टन थे, जिनसे शॉ की खूब वैचारिक नोकझोंक चलती थी, बड़ी मजेदार बहसें होती थी उनकी, सुनने लायक।
और जैसा हमने कहा, विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, महिलाओं के वोट का अधिकार आंदोलन, आयरलैंड की आजादी की लड़ाई, फासीवाद का उदय, ये सब बड़ी घटनाएं उनके आसपास घट रही थी, तो जाहिर है इन सब का असर उनके लेखन पर पड़ा होगा।
बिल्कुल पड़ा। और एक आयरिश प्रोटेस्टेंट होते हुए लंदन में रहना, इसने उन्हें एक बहुत ही अनोखा नजरिया दिया। वो ब्रिटिश समाज को एक इनसाइडर की तरह भी समझते थे क्योंकि वो वहीं रह रहे थे, और एक आउटसाइडर की तरह उसकी आलोचना भी कर सकते थे। उनकी आलोचना में इसीलिए एक खास तरह का पैनापन मिलता है।
शो का शुरुआती जीवन भी किसी नाटक से कम नहीं लगता। डबलिन में भद्र गरीबी में बचपन बीता, जैसा वो खुद कहते थे।
माहौल थोड़ा कह सकते हैं हटके था। पिता असफल व्यापारी थे, कुछ हद तक शराबी भी। माँ संगीत सिखाती थीं, महत्वाकांक्षी थीं, और माँ के संगीत गुरु जॉर्ज जॉन वेंडेल्यूर ली वो भी उन्हीं के साथ रहते थे। इस तिकड़ी ने शायद पारंपरिक परिवार और शादी जैसे रिश्तों पर सवाल उठाने की जमीन तैयार कर दी शौक के लिए बचपन से ही।
और स्कूली पढ़ाई, मैंने सुना है उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। वेस्लिन कनेक्शनल स्कूल हो या डबलिन इंग्लिश साइंटिफिक स्कूल, उन्हें लगता था ये सब वक्त ही बर्बादी है। वो तो कहते थे कि उनकी असली पढ़ाई आयरलैंड की नेशनल गैलरी के चक्कर लगाकर और संगीत सुनकर हुई है। वो सेल्फ एजुकेटेड थे, खुद पढ़कर सीखने वाले इंसान।
तो फिर लंदन कैसे पहुंचे, वो बदलाव कैसे आया?
15 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर क्लर्क बने, पर जल्दी समझ गए कि ये उनके बस का नहीं है। फिर 20 साल की उम्र में 1876 में अपनी माँ और बहन के पीछे लंदन चले आए, लेखक बनने का सपना लेकर।
लेकिन लंदन में शुरुआत आसान नहीं रही होगी, है ना?
बिल्कुल नहीं, आसान कैसे होती। करीब 10 साल संघर्ष में बीते, गरीबी में, नामंजूरी में, 5 उपन्यास लिख डाले, इमेच्योरिटी, द इरेशनल नॉट जैसे नाम कोई छापने को तैयार नहीं। माँ की कमाई पर गुजारा चल रहा था। सोचिए कितना मुश्किल दौर रहा होगा उनके लिए।
पर शायद इसी दौर ने उन्हें अंदर से मजबूत बनाया, उनकी सोच को एक दिशा दी।
हाँ, लगता तो यही है। यही वो समय था जब उनका बौद्धिक जागरण हुआ। ब्रिटिश म्यूजियम की रीडिंग रूम उनका जैसे दूसरा घर बन गया। वहीं उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ा, और 1882 में अमेरिकी अर्थशास्त्री हेनरी जॉर्ज का एक भाषण सुना जिसने उन्हें समाजवाद का कायल बना दिया। ये उनके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ था।
और यहीं से शो के सितारे चमकने शुरू हुए, कह सकते हैं। फेबियन सोसाइटी से जुड़ना उनके लिए कैसा रहा, क्या वो टर्निंग पॉइंट था?
वो उनके लिए एक लॉन्च पैड जैसा साबित हुआ, बिल्कुल। वो सोसाइटी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक बन गए। उनके भाषण सुनने के लिए भीड़ जुटती थी। उन्होंने सीखा कि गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी हाजिर जवाबी और व्यंग्य के साथ कैसे बात की जाए, और यही अंदाज उनके नाटकों की जान बना आगे चलकर।
साथ ही उन्होंने आलोचक के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई, है ना?
हाँ, बिल्कुल। पॉल मॉल गैजेट, द वर्ल्ड, द सैटरडे रिव्यू जैसे बड़े अखबारों के लिए उन्होंने संगीत और नाटक की समीक्षाएं लिखी। वो इब्सन के नाटकों और वैगनर के संगीत के जबरदस्त पैरोकार थे, और विक्टोरियन दौर के जो घिसे पिटे मेलोड्रामा थे उनकी तो धज्जियां उड़ा देते थे अपनी समीक्षाओं में।
अच्छा,
उनकी समीक्षाएं सिर्फ अच्छा या बुरा बताने वाली नहीं होती थी, नहीं, वो नाटक के विचारों और उसके सामाजिक असर पर बात करती थी।
और फिर आखिरकार नाटक लिखने की शुरुआत हुई।
हाँ, उस समय इंडिपेंडेंट थिएटर मूवमेंट नाम का एक आंदोलन चल रहा था जो नए और गंभीर किस्म के नाटक करना चाहता था। उससे प्रेरित होकर शो ने लिखना शुरू किया। उनका पहला नाटक जो स्टेज पर खेला गया वो था विडोअर्स हाउसेस, 1892 में।
अच्छा, किस बारे में था ये?
ये लंदन में गरीबों के मकान मालिक कैसे उनका शोषण करते हैं इस पर था। बहुत विवादास्पद रहा, काफी हंगामा हुआ इसे लेकर।
निजी जिंदगी में भी इस दौरान कुछ बदलाव आए?
हाँ, उनके जीवन में कई अहम महिलाएं आईं, जैसे कार्ल मार्क्स की बेटी एलिनोर मार्क्स, अभिनेत्रियां जेनेट आर्चर्च और फ्लोरेंस फार। इन रिश्तों ने शायद औरतों के अधिकारों और समाज में उनकी जगह को लेकर उनकी समझ को और गहरा किया होगा। फिर 1898 में उन्होंने चार्लॉट पेन टाउनशिन से शादी की। वो एक अमीर आयरिश महिला थी और साथ ही फेबियन भी। इस शादी से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली और वो पूरी तरह लिखने पर ध्यान दे पाए। शॉस कॉर्नर में रहने लगे।
तो अब आते हैं शो के बड़े विचारों और उनके साहित्यिक योगदान पर। रंगमंच को बदलना तो उनका सबसे बड़ा काम माना ही जाता है, जैसा हमने बात की।
हाँ, उन्होंने विचारों का नाटक खड़ा किया। बहस, तर्क, विचारों का टकराव, ये उनके नाटकों के केंद्र में होता था, न कि सिर्फ कहानी या प्लॉट। उन्होंने चर्चा नाटक की तकनीक विकसित की। उसमें किरदार अक्सर लंबे लंबे भाषणों में अलग अलग नजरिए पेश करते हैं, दर्शक को सोचने पर मजबूर करते हैं।
और उनकी वो मशहूर भूमिकाएं, शेवियन प्रस्तावना,
शेवियन प्रोफेस,
वो क्या थी?
अरे हाँ, वो तो कमाल की चीज है। उनके नाटक जब छपते थे तो उनके साथ लंबी चौड़ी भूमिकाएं होती थीं, प्रस्तावनाएं। ये सिर्फ नाटक की व्याख्या नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने आप में धारदार, मजेदार और विचारोत्तेजक निबंध होते थे। शो उनमें नाटक के मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखते थे, कभी कभी तो नाटक से भी ज्यादा लंबे।
सच में?
हाँ, ये प्रस्तावनाएं खुद ही साहित्यिक कृति बन गई, लोग उन्हें अलग से भी पढ़ते थे।
उनकी लिखने की शैली कैसी थी, क्या खास था उसमें?
पैनी बुद्धि, विरोधाभास का इस्तेमाल, मतलब दो उल्टी बातें एक साथ कहना जिससे एक नया मतलब निकले, और पुरानी मान्यताओं को मजाक मजाक में उलट देना। उनके किरदार कठपुतलियां नहीं होते, वो जीते जागते विचार होते हैं जो आपस में टकराते हैं और दर्शक को सोचने पर मजबूर करते हैं। मजाक और गंभीरता का एक गजब का संतुलन था उनमें।
उनके मुख्य विषय क्या रहे? किन चीजों पर वो बार बार लिखते थे?
कई बड़े मुद्दे थे। समाज में वर्गों का संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, मर्दों और औरतों के रिश्ते, खासकर नई औरत का विचार।
हाँ, ये नई औरत क्या थी उनकी नजर में?
वो औरत जो पढ़ी लिखी हो, आजाद हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, ये उस जमाने के लिए बहुत रेडिकल विचार था। फिर गरीबी। गरीबी को वो सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा अपराध मानते थे। युद्ध की बेहूदगी पर उन्होंने खूब लिखा, धर्म के नाम पर पाखंड की आलोचना की।
और उनकी फिलॉसफी, एक तरफ तो फेबियन समाजवाद था।
हाँ, यानी धीरे धीरे सुधारों के जरिए समाजवाद लाना, क्रांति से नहीं। दूसरी तरफ वो जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स के विचार में भी यकीन रखते थे। ये एक तरह की आध्यात्मिक विकासवादी ताकत है जो इंसानियत को बेहतर और ज्यादा विकसित होने की तरफ धकेलती है, ऐसा उनका मानना था। ये उनके नाटक मैन एंड सुपरमैन का केंद्रीय विचार है।
तो चलिए उनके कुछ सबसे मशहूर नाटकों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत कहां से करें? प्लेज अनप्लेजेंट से?
हाँ, कर सकते हैं। उनके शुरुआती नाटकों का एक संग्रह था प्लेज अनप्लेजेंट, यानी अप्रिय नाटक। नाम ही काफी है। इसमें विडोर्स हाउसेस था, झुग्गी झोपड़ी मालिकों पर। फिर आया प्लेज प्लेजेंट, यानी प्रिय नाटक। इसमें आर्म्स इन द मैन।
हाँ, वो चॉकलेट वाला सैनिक,
वही जो जंग और बहादुरी के रोमानी ख्यालों का मजाक उड़ाता है। वो किरदार जो जेब में गोलियों की जगह चॉकलेट क्रीम लेकर घूमता है, बहुत मशहूर हुआ।
इसी संग्रह में कैंडिडा भी था, है ना, जो एक मजबूत स्वतंत्र औरत और शादी में उसके चुनाव के अधिकार को दिखाता है।
बिल्कुल। फिर आया मैन एंड सुपरमैन 1903 में। ये उनके जीवन शक्ति वाले फलसफे को सामने लाता है। इसमें एक हिस्सा है डॉन जुआन इन हेल, नरक में डॉन जुआन की दार्शनिक बहस। ये अपने आप में इतना अद्भुत है कि इसे अक्सर अलग से भी खेला जाता है, एक अलग नाटक की तरह।
और मेजर बाबरा 1905 का, वो क्यों खास है, क्या बात थी उसमें?
वो नैतिकता पर बड़े पेचीदा सवाल उठाता है। शौक का तर्क है कि गरीबी सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि ये इंसान की आत्मा को मार देती है। नाटक में वो ये चौंकाने वाला विचार रखते हैं कि शायद हथियार बनाने वाले का पैसा जो लोगों को गरीबी से निकालता है, उस दिखावटी दान से बेहतर है जो गरीबी को बनाए रखता है।
ये तो वाकई।
हाँ, ये दिखाता है कि शॉ सतही चीजों के बजाय व्यवस्था की जड़ों पर चोट करते थे। वो आपको असहज करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और फिर उनका सबसे लोकप्रिय नाटक पिग्मेलियन 1913।
हाँ, एक साधारण फूल बेचने वाली लड़की एलिजा डोलिटल, जिसे एक भाषा विज्ञानी ऊंचे समाज की महिला की तरह बोलना और बर्ताव करना सिखाता है। ये नाटक क्लास, भाषा, पहचान और औरत की आजादी जैसे मुद्दों को इतनी खूबसूरती और हास्य के साथ उठाता है कि आज भी उतना ही ताजा लगता है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके लेखन में कुछ बदलाव आया।
क्या टोन बदली?
हाँ, कुछ हद तक। एक मोहभंग का भाव दिखता है। हार्टब्रेक हाउस 1919 में लिखा गया। ये युद्ध के बाद यूरोपीय समाज के खोखलेपन पर एक उदास सी टिप्पणी है, कुछ कुछ रूसी लेखक चेकोव के अंदाज में।
और आखिर में, जिसे कई लोग उनकी सबसे बेहतरीन रचना मानते हैं, सेंट जॉन 1923, जोन ऑफ आर्क की कहानी। लेकिन शॉ की जोन न सिर्फ एक संत है, न सिर्फ एक विद्रोही, वो एक व्यवहारिक जीनियस है। एक तरह की पहली प्रोटेस्टेंट है जो अपने जमाने की बड़ी ताकतों, चर्च और सामंती व्यवस्था से टकरा जाती है। ये व्यक्ति बनाम संस्था की कालजयी कहानी है। शॉ उसे एक जीती जागती, जटिल, हार्ड मास की इंसान के तौर पर दिखाते हैं।
इन सब कामों के लिए उन्हें पहचान भी खूब मिली। 1925 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।
हाँ, उनके आदर्शवाद और मानवता भरे लेखन के लिए। लेकिन शॉ तो ठहरे शॉ, पहले तो इनाम की रकम लेने से ही मना कर दिया।
अच्छा, क्यों?
उनका अपना अंदाज था। बाद में माने भी तो इस शर्त पर कि वो पैसा स्वीडिश नाटककार स्ट्रिनबर्ग के नाटकों के अंग्रेजी अनुवाद पर खर्च होगा।
गजब। और फिर 1938 में पिग्मेलियन फिल्म की पटकथा के लिए ऑस्कर। इतिहास में अकेले शख्स जिन्हें नोबेल और ऑस्कर दोनों मिले हों, ये तो अविश्वसनीय है।
और सुनिए, ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड और ऑर्डर ऑफ मेरिट देना चाहा तो वो भी ठुकरा दिया। कहते थे कि एक सामाजिक आलोचक को सत्ता से सम्मान नहीं लेना चाहिए। अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान थे वो, बिल्कुल।
आज शॉ की विरासत को हम कैसे देखते हैं, मतलब इतने साल बाद, क्या वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं?
उनका असर तो बहुत गहरा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नाटककारों की कई पीढ़ियों ने उनसे सीखा, ब्रेक्ट, पिंटर, आर्थर मिलर, जॉन ओसबोर्न जैसे कितने ही नाम हैं। उन्होंने ब्रिटिश थिएटर को एक नई गंभीरता और मकसद दिया। शेवियन शब्द ही उनकी खास किस्म की तेज बुद्धि और चुनौती देने वाले अंदाज का प्रतीक बन गया है।
लेकिन उनके कुछ विचारों पर आज सवाल भी उठते हैं, जैसे कुछ तानाशाहों की उन्होंने तारीफ की थी या यूजेनिक्स जैसे विचारों का समर्थन।
हाँ, ये उनके व्यक्तित्व का एक जटिल और आज के नजरिए से देखें तो समस्याग्रस्त पहलू है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि महान लोगों के विचार भी हमेशा सही या समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लेकिन इन बातों से उनकी नाटकीय उपलब्धि कम नहीं हो जाती। उनके हास्य नाटक पिग्मेलियन, आर्म्स एंड द मैन आज भी लोगों को हंसाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं, और सेंट जॉन जैसी रचनाएं आधुनिक साहित्य की धरोहर हैं।
और उनके उठाए मुद्दे समाज में गैर बराबरी, लिंग भेद, सत्ता का खेल, पाखंड, ये तो आज भी हमारे समाज की सच्चाइयां हैं, है ना?
बिल्कुल, व्यक्ति और व्यवस्था के बीच का टकराव ये आज भी जारी है। शायद इसीलिए शॉ को पढ़ना आज भी जरूरी लगता है, वो आज भी हमें आईना दिखाते हैं।
उनके नाटकों के फिल्म रूपांतरणों ने भी उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया, खासकर पिग्मेलियन पर बनी म्यूजिकल फिल्म माई फेयर लेडी 1956, वो तो बहुत चली।
हाँ, माई फेयर लेडी दुनिया भर में हिट हुई। ऑड्री हेपबर्न वाली फिल्म तो क्लासिक मानी जाती है, लेकिन एक बात है, उसने शॉ के मूल नाटक की धार थोड़ी कुंद कर दी।
कैसे?
देखिए, शॉ की एलिजा एक आजाद औरत बनने की तरफ बढ़ती है, वो प्रोफेसर हिगिन्स पर निर्भर नहीं रहती, जबकि माई फेयर लेडी ने उसे एक पारंपरिक रोमांटिक कहानी में बदल दिया और एक हैप्पी एंडिंग जोड़ दी, जो शॉ को कतई पसंद नहीं आती, वो इसके सख्त खिलाफ थे।
अच्छा, जबकि 1938 वाली पिग्मेलियन फिल्म, जिसकी पटकथा खुद शॉ ने लिखी थी और जिसके लिए उन्हें ऑस्कर मिला, वो मूल नाटक के ज्यादा करीब थी।
हाँ बिल्कुल, शॉ के नाटकों को फिल्म में ढालना हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि वो संवाद और विचारों पर ज्यादा टिके होते हैं, एक्शन पर कम। फिर भी कोशिशें हुई। गैब्रियल पास्कल ने 1940s के दशक में मेजर बारबारा और सीजर एंड क्लोपाट्रा जैसी फिल्में बनाई। टीवी पर भी उनके नाटक खूब खेले गए हैं, बीबीसी ने कई बनाए।
शॉ के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जो कम लोग जानते हो, कुछ फैक्ट्स।
एक तो वो पक्के शाकाहारी थे, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी एक पहचान, एक पब्लिक पर्सोना खुद गढ़ी थी। अपनी दाढ़ी, अपने कपड़े, बोलने का अंदाज सब सोचा समझा था। और जैसा हमने जिक्र किया, उनका पारिवारिक जीवन भी काफी अलग था, पारंपरिक नहीं था।
और उनकी मौत भी काफी नाटकीय ढंग से हुई।
हाँ, 94 साल की उम्र में अपने बगीचे में पेड़ की डाल काटते हुए सीढ़ी से गिर पड़े और उसी चोट से उनकी मृत्यु हुई। मतलब आखिर तक एक्टिव और अपने काम में लगे रहने वाले इंसान थे वो।
शॉ अपने कमाल के उद्धरणों के लिए भी जाने जाते हैं, कुछ याद करें
श्रोताओं के लिए।
हाँ,
एक तो उनका वो मशहूर कथन है मैन एंड सुपरमैन से, समझदार इंसान दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, नाजमझ इंसान इस जिद पर अड़ा रहता है कि दुनिया को अपने हिसाब से ढालेगा। इसलिए सारी तरक्की नासमझ इंसानों पर ही निर्भर करती है। क्या बात है, मतलब जो लीक से हटकर चलते हैं वही बदलाव लाते हैं।
एक और बड़ी मजेदार और खरी बात मैंने बहुत पहले सीख लिया था, सुअर से कभी कुश्ती मत लड़ो, एक तो तुम गंदे हो गए, दूसरे सुअर को इसमें मजा आएगा।
हाँ, बेकार की बहसों और झगड़ों से बचने की सीधी सलाह।
राष्ट्रवाद पर उनकी तीखी टिप्पणी थी, देशभक्ति आपका ये यकीन है कि आपका देश बाकी सबसे बेहतर है सिर्फ इसलिए कि आप इसमें पैदा हुए हैं।
लोकतंत्र पर भी उनका नजरिया थोड़ा शक वाला था।
लोकतंत्र एक ऐसा इंतजाम है जो पक्का करता है कि हमें उतनी ही अच्छी सरकार मिले जिसके हम लायक हैं, उससे बेहतर नहीं।
और भविष्य की जिम्मेदारी पर ये बात,
हमें बुद्धिमान हमारे अतीत की यादें नहीं बनाती बल्कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी बनाती है।
और मेजर बारबरा की भूमिका से वो बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। ये गरीबी को व्यक्ति की नहीं समाज की, सिस्टम की समस्या के तौर पर देखने का नजरिया देता है।
और ये वाला तो बहुत मशहूर है, जो कर सकता है वो करता है, जो नहीं कर सकता वो सिखाता है।
हाँ।
थोड़ा चुभने वाला है पर सोचने पर मजबूर करता है।
और शायद सबसे ज्यादा शावियन अंदाज वाला, सुनहरा नियम यह है कि कोई सुनहरा नियम नहीं होता, मतलब किसी भी विचार या नियम को आंख मूंद कर मत मानो, सवाल करो।
वाह, क्या कमाल के विचार और क्या शख्सियत। तो आज की इस बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
हाँ, शॉ ने कहा कि सारी तरक्की नासमझ यानी लीक से हटकर चलने वालों पर निर्भर करती है, तो सवाल यह है कि आज के दौर में ऐसे लोगों की क्या जगह है, क्या हमारा समाज उन्हें बढ़ावा देता है या दबाता है।
और क्या कला में मनोरंजन और गंभीर सामाजिक सरोकार एक साथ चल सकते हैं जैसा शॉ ने कर दिखाया, या आज दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं? इस पर भी सोचा जा सकता है।
और ये सवाल भी है कि हम उन महान लोगों की विरासत को कैसे देखें जिनके कुछ विचार आज हमें गलत या आपत्तिजनक लगते हैं, कैसे समझे उन्हें, इस पर जरूर सोचिएगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रे फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।